जयदेवला पुस्तक 11वी लेक्चर नंबर 19 ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम शुद्धात्मने नमः नमो नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सौवसामुं वेदगं वेदगं ससं सिद्धं सिद्धं पणनीय शिरसा वोच्चं वेदगमाहि आरमं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा इतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की। 11वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 151 पर आ गए। 151 उत्तर प्रकृति अनुभाग उदीर्णा के भुजगार आदि के प्रकरण में हम अंतर देख रहे हैं। कल हमने काल देखा था विस्तार से, अब यह अंतर की बात चलेगी। अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व 16 कषाय और 7 नौ कषायों के सब पदों के उदीरकों का अंतरकाल नहीं है। ये नाना जीवों की बात चल रही है। एक जीव की अपेक्षा हमने देखा था अंतर पड़ सकता है, बुजगार अल्पतर में एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक अंतर देखा था, अवस्थित के लिए एक समय से लेकर असंख्यात लोक तक अंतर देखा था। ओग से मिथ्यात्व 16 कषाय 7 नौ कषायों के सब पदों के उदीरकों का अंतरकाल नहीं है। नहीं, नपुंसक वेद को छोड़ा है और मेरे ख्याल से
नपुंसक वेद का तो अंतर नहीं है।
क्यों नहीं है? यहाँ आदेश की बात नहीं चल रही, ओग से चल रही है। हाँ, सभी जीव लेंगे परंतु उसके विशिष्ट पद ले लेंगे। ना ना, निरंतर बंदी है, उदय में फर्क पड़ता है। देखो, सब पद है ना, उसमें नपुंसक वेद में अवक्तव्य में डिफरेंस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
हाँ, पड़ेगा।
तीन वेदों में लेना है अवक्तव्य पद में, क्योंकि 16 कषाय और 7 नौ कषायों का उदय अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में आता रहेगा पलट कर, तो उसमें अवक्तव्य भी होता रहेगा। नहीं समझे? तीनों वेद वैसे 7 नौ कषाय लिए यहाँ पर, सब पदों के उदीरकों का अंतर नहीं है। आगे पढ़ेंगे ना तो ख्याल में।
आगे
आगे पढ़ेंगे तो ख्याल में ये बात बता दी। जहाँ तो प्रतिपक्ष का उदय उदीर्ण होती है, उसका तो लौट कर उसमें अवक्तव्य तो होता रहेगा बारंबार। तो यहाँ कहते ओघ से, अभी मिथ्यात्व में अवक्तव्य में फर्क पड़ेगा, ओव से मिथ्यात्व 16 कषाय और 7 9 कषाय के सब पदों के उदीरकों का अंतरकाल नहीं है, इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व के अवक्तव्य पद के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय के अंतर से कोई ना कोई मिथ्या समय आया, बीच में एक समय का अंतर पड़ा। उत्कृष्ट अंतरकाल 7 दिन रात है, जैसे सम्यक तो प्राप्ति में 7 दिन रात का अंतर देखा था, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में आने में भी अधिक से अधिक अंतर 7 दिन रात का है। नपुसक वेद के अवक्तव्य पद के उदीरक का ये इतनी विशेषता में नपुसक वेद को भी इसी में ले लिया, 7 9 कषाय में नपुसक वेद लिया, स्त्री वेद पुरुष वेद को छोड़ दिया, यानी 7 9 कषाय में स्त्री पुरुष वेद बिना। विशेषता में क्या लिया है उन्होंने, मिथ्यात्व के अवक्तव्य में उत्कृष्ट अंतर 7 दिन रात का, और नपुसक वेद के अवक्तव्य पद के उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 24 मुहूर्त।
नरक में
24 नरक का तो है ही है, अन्य भी नपुसक वेद ही सारे हो गए ना, केंद्रीय भी
केंद्रीय में तो नपुसक से नपुसक में जाएगा तो अवक्तव्य
नहीं, उसकी बात नहीं है, स्त्री में से नपुसक में आने वाली की बात है या पुरुष में से नपुसक में आने वाली की बात है। नपुसक में से नपुसक में जाएगा उसको अंतर कैसे कहेंगे हम, उसको यानी अवक्तव्य नहीं कहेंगे हम, अवक्तव्य कब कहेंगे, स्त्री या पुरुष वेदी में से जो नपुसक वेदी हो जाएगी उसकी बात। हाँ, एक समय के अंतर से भी कोई जा सकता है, एक या अनेक जीव
7 दिन रात में,
और अधिक से अधिक लंबे काल कोई नहीं मिथ्या दृष्टि होगा तो 7 दिन में तो होगा ही होगा। हाँ, असंख्यात है ना, इसलिए तो मिथ्या तो में एक समय के अंतर से भी आ सकते हैं, अधिक से अधिक 7 दिन के अंतर से भी आ सकते हैं, इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है। और ये नपुसक वेद में जन्मने वालों में तो 24 मुहूर्त का अंतर, ऐसे हमने नारकी में जन्मने वालों में देखा था 24 मुहूर्त का अंतर, परंतु वो बात यहाँ नहीं लेना, यहाँ नपुसक वेद की बात लेनी है। सम्यक्त्व के भुजगार और अल्पतर पद के उदीरकों का अंतरकाल नहीं है, अवस्थित पद के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है, और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है। जो एक जीव की अपेक्षा बताए वही नाना जीव उनकी अपेक्षा भी बता दिया। अवक्तव्य पद के उदीरकों का भंग मिथ्यात्व के समान है, जैसे मिथ्यात्व में जाने वाले 7 दिन रात है, सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले हैं। वक्तव्य ने वेद समय को प्राप्त करने वाले, समय तो की बात चल रही है। हाँ, यानी ये तो वेदक समय दृष्टि 7 दिन रात के अंतर के अंतर से हो गई होगी, और पहले हमने मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व में आने वाला भी ले लिया। समय मिथ्यात्व के भुजगार अल्पतर और अवक्तव्य पद के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर का पल्योपन के असंख्यात विभाग प्रमाण, ये मार्गणा का अंतर है। क्योंकि सम्यक प्रकृति में तो भुजगार अल्पतर का अंतर नहीं कहा था, और यहाँ तो अंतर है क्योंकि वो मार्गणा ही नहीं रही। अवस्थित पद के उदीरकों के अंतरकाल का भंग सम्यक के समान है, यानी असंख्यात लोग एक समय से लेकर असंख्यात। स्त्री वेद और पुरुष वेद के सब पदों के उदीरकों के अंतरकाल का भंग सम्यक्त्व के समान है, यानी भुजगार और अल्पतर में अंतर नहीं है। सम्यक्त्व में अभी हमने देखा था अवस्थित में उत्कृष्ट असंख्यात लोक होगा, और अवक्तव्य में कितना होगा, इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पद के उदीरकों का अंतरकाल का भंग नपुसक वेद के समान है। क्योंकि हमने देखा ना, हर जगह उसका बैलेंस कायम रहता है, 7 दिन रात के बाद कोई ना कोई स्त्री पुरुष वेद
24 मिनट
7 दिन रात तो सम्यक्त्व का था, आपने बताया सम्यक्त्व का, तो मैं भी उसी को बता रही हूँ, ये 24 मुहूर्त है। इसी प्रकार तिर्यंशों में जानना चाहिए उदीरकों का हुआ, उदीरकों का नहीं, उदीर कौन से अंतरकाल का भंग है? विशेषार्थ, इस अंतरकाल प्ररूपणा से मालूम होता है कि वेदक सम्यक से च्युत होकर कोई जीव अधिक से अधिक 7 दिन रात तक मिथ्या दृष्टि नहीं होता, और मिथ्यात्व मिथ्वा हुआ है, मिथ्यात्व को त्याग कर अधिक से अधिक 7 दिन रात तक कोई जीव वेदक सम्यक दृष्टि नहीं होता। इसी प्रकार अन्य वेद वाला कोई जीव मरकर यदि नपुसक वेदी, स्त्री वेदी या पुरुष वेदियों में नहीं उत्पन्न हो तो अधिक से अधिक 24 मुहूर्त तक नहीं उत्पन्न हो। तीनों वेदों के लिए यही बात है, शेष कथन स्पष्ट ही है। हाँ, कोई जीव करना, उसका व का ब का व करते रहते हैं आदेश से। नारकियों में मिथ्यात्व के भुजगार और अल्पतर पद के उदीरकों का अंतरकाल नहीं है, कहीं भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं। अवस्थित पद के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है। वहाँ ओघ में मिथ्यात्व का अवस्थित का भी अंतर नहीं बताया, क्योंकि अनंत जीव करने वाले। अब यहाँ नारकी में तो अंतर पड़ेगा असंख्यात लोग। अवक्तव्य पद के उदीरकों के अंतरकाल का भंग ओघ के समान है, एक समय से लेकर 7 दिन रात तक। इसी प्रकार 16 कषाय और 7-9 कषायों के सब पदों के उदीरकों का अंतरकाल जानना चाहिए।
ओग से लेना है ना, ओग में
देखो। अभी 7-9 कथा क्योंकि यहाँ स्त्री पुरुष वेद का कोई बात नहीं है, उसकी बात इतनी विशेषता है। इनके अवक्तव्य पद के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर मुहूर्त है।
तथा यह सभी ले लिया 16 कथा और 7-9 कथा।
हाँ, वह अंतरकाल नहीं है कहा था,
यहाँ पे अवक्त
वहाँ अनंत जीव है, इसलिए नपुसक वेद का अवक्तव्य पद नहीं है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के सब पदों के उदीरकों के अंतरकाल का भंग ओघ के समान है, यानी सम्यक्त्व में भुजगार अल्पतर हमेशा ही हो गए, अवस्थित का अंतर असंख्यात लोग अधिक से अधिक,
अवक्तव्य
का 7 दिन रात मैक्सिमम, कम से कम एक समय। सम्यक मिथ्यात्व में मार्गणा का अंतर एक समय से लेकर पल्ले का असंख्यात का। इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए, यानी पहले से 7वें नरक। इसी प्रकार पंचेंद्र तीरियंच त्रिक में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि नपुसक वेद के अवक्तव्य पद के उदीरकों के अंतरकाल का भंग ओघ के समान है, एक समय से लेकर 24 मुहूर्त तक। स्त्री वेद वो स्त्रव हुआ है, स्त्री वेद और पुरुष वेद के सब पदों के उदीरकों के अंतरकाल का भंग ओघ के समान है, यानी उसमें अल्पतर भुजगार का अंतर नहीं है, अवस्थित का असंख्यात लोक अधिक से अधिक अंतर, और अवक्तव्य का
24 मुहूर्त।
इतनी विशेषता है कि पर्याप्तों में स्त्री वेद नहीं है, मनुष्य पर्याप्त में स्त्री वेद नहीं है, या पंचनीतिवेद से अधिक बात कर रहे, और योनिनियों में स्त्री वेद तथा पुरुष वेद नपुसक वेद चाहिए। योनिनियों में पुरुष वेद और नपुसक वेद नहीं चाहिए था, ठीक है, नपुसक वेद पहला लिया उन्होंने, नपुसक वेद और स्त्री पुरुष वेद नहीं है, तथा योनिनियों में स्त्री वेद का वक्तव्य पद नहीं है। तिरियंच योनिनी की बात कर ली, मुनि श्रेणी में तो होगा, उपशम श्रेणी के बाद पंचेंद्रिय तिरियन चपर्याप्तकों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 7-9 कषायों के सब पदों के उदीरकों के अंतरकाल का भंग नारकियों के समान है, यानी भुजगार अल्पतर का अंतर नहीं होगा, अवस्थित का एक समय से लेकर
लोक का संख्या तक।
हाँ, लोक का संख्या तो अभाग नहीं, असंख्यात लोक,
असंख्यात लोक, सॉरी,
मिथ्यात्व में,
मिथ्यात्व में आवक का भी नहीं
होगा, मिथ्यात्व में। हाँ, और 16 कषाय में तो वो तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में होगा ना, उसका अंतर पड़ेगा, इतनी विशेषता इनमें मिथ्यात्व का अवक्तव्य पद नहीं है, क्योंकि सारे मिथ्या दृष्टि है, उसका तो ध्रुव भंग है नियम से। मनुष्य त्रिक में पंचेंद्रिय त्रिंच त्रिक के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि मनुष्य नियो में स्त्रीवेद के अवक्तव्य पद के उदीरकों का जघन्य अंतर काल एक समय है, नाना जीवन की अपेक्षा है इसलिए, और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक का प्रमाण है। उपशम श्रेणी का उत्कृष्ट अंतर लिया और वह भी त्रिवेद सहित चढ़ना है। मनुष्य अपर्याप्तकों में सब प्रकृतियों के सब पदों के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है, और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। ये सांतर मार्गणा है और मार्गणा का अंतर यहाँ ले लिया, इतनी विशेषता है, अवस्थित पद के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है। भले मार्गणा का अंतर पल्य का असंख्यात अभाव है, फिर भी अवक्तव्य के है अवस्थित के लिए इतना लंबा अंतर होगा। वहां देवों में पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि इनमें नपुसक वेद नहीं है तथा इनमें स्त्री वेद और पुरुष वेद का अवक्तव्य पद नहीं है, जो जिसका वेद है वही रहेगा, उसमें अवक्तव्य नहीं होगा। इसी प्रकार भवनवासी व्यंतर ज्योतिष तथा स्वधर्म और ऐशान कल्प के देवों में जानना चाहिए। इसी प्रकार सनत कुमार कल्प से लेकर नव ग्रहवेग तक के देवों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता इनमें स्त्री वेद नहीं है। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में सम्यक्त्व 12 कषाय और 7-9 कषायों के सब पदों के उदीरकों के अंतरकाल का भंग आनत कल्प के समान है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व के अवक्तव्य पद के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल नव अनुदिश तथा 4 अनुत्तर विमानों में वर्ष पृथक का प्रमाण तथा सर्वार्थ सिद्धि में पल्योपम के संख्यात विभाग प्रमाण लंबा काल। इतने अंतर से वहाँ कोई ना कोई जीव अवक्तव्य करेगा का अर्थ है द्वितीय उपशम के साथ उत्पन्न होगा और फिर समय वेदक समय दृष्टि होगा। एक जीव की अपेक्षा तो अवक्तव्य का अंतर नहीं हो सकता, नाना जीवन की अपेक्षा यहाँ अंतर देख रहे हैं हम, वो बात अगर भूल जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ख्याल में आई बात। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। भावानुगम भुजगार में भावानुगम
12 नंबर
13 अनुयोग है ना इसमें। भावानुगम की अपेक्षा सर्वत्र उदयिक भाव है। अब अल्प बहुत्वानुगम की अपेक्षा भुजगार नंबर 13 निर्देश दो प्रकार का है ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व और नपुसक वेद के अवक्तव्य अनुभाग के उदीरक जीव सबसे स्तोक है।
मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का समान नहीं लिया,
अभी सुनेंगे पहले। मिथ्यात्व और नपुंसक वेद के अवक्तव्य अनुभाग के उद्गीरक जीव सबसे स्तोक है, उनसे अवस्थित अनुभाग के उद्गीरक जीव अनंत गुण है। एक एक प्रकृति के अपने अपने अल्प बहुत्व देखना है, आपस में कंपैरिजन नहीं कर रहे। यानी मिथ्यात्व के साथ अन्य प्रकृतियों के कितने उसकी यहाँ वो अपने यहाँ का विषय नहीं है। यहाँ तो मिथ्यात्व प्रकृति में अवक्तव्य वाले जीव सबसे स्तोक है, उनसे अवस्थित अनुभाग के उद्गीरक जीव अनंत गुण है कम फिर भी है अनंत। उनसे अल्पतर अनुभाग के उद्गीरक जीव असंख्यात गुण है। हमने भागा भाग में देखा था भुजगार के सबसे ज्यादा यानी आधे से ज्यादा थे, अल्पतर से आधे से कम थे और फिर वो अवस्थित और वो अन्य अन्य लिए। ये अल्पतर हो गया असंख्यात गुण। उनसे भुजगार अनुभाग के उद्गीरक जीव विशेष अधिक है तो अनंत, अवस्थित भी अनंत है, अल्पतर भी अनंत है और भुजगार भी अनंत है। फिर भी अवक्तव्य सबसे कम थे, उनसे अवस्थित वाले अनंत गुणे, उनसे अल्पतर वाले असंख्यात गुणे और भुजगार वाले कुछ अधिक। सम्यक्त्व सम्यक् मिथ्यात्व 16 कषाय और 8-9 कषायों के अवस्थित अनुभाग के उद्गीरक जीव सबसे स्तोक है। अब यहाँ अवस्थित में ले लिया पहले में पहले। सम्यक सम्यक् मिथ्यात्व 16 और 8-9 कषायों के बारे में नपुंसक वेद को ऊपर लिया था, इसलिए नपुंसक वेद को छोड़कर 8-9 कषाय दिए। सबसे कम है अवस्थित, उनसे अवक्तव्य अनुभाग के उद्गीरक जीव असंख्यात गुणे हैं। मिथ्यात्व और नपुंसक के अवस्थित करने वाले अनंत जीव थे
अवक्तव्य वाले,
परंतु यहाँ अवस्थित वाले सबसे कम है, अवक्तव्य वाले असंख्यात गुणे हैं। उनसे अल्पतर अनुभाग के उद्गीरक जीव असंख्यात गुणे हैं।
यहाँ पे अवस्थित में भी असंख्यात गुणे ही लेना पड़ेगा।
अवस्थित वाले कम लिखे ना,
अच्छा परिमाण में
तो उसका प्रमाण तो असंख्या कम देख चुके हैं। प्रमाण की यहाँ बात नहीं है, उसका अपना अपना अल्प बहुत्व देखना है। सम्यक प्रकृति के जो अपने चार पद है उसमें अल्प बहुत्व लगाना है, मिथ्या तो के अपने पद है उसमें अल्प बहुत्व लगाना है, वो बात चल रही है यहाँ पर। तो मिथ्यात्व का करने वाले तो अनंत है, तो वहाँ अनंत गुणा तक चल जाएगा। अब यहाँ करने वाले जो ही असंख्यात है तो उसमें जो अल्प बहुत्व है, अवस्थित वाले सबसे कम, अवक्तव्य असंख्यात गुणे। अभी 16 कषाय करने वाले तो अनंत होगी, फिर भी उसमें ये डिफरेंस होगा, असंख्यात गुणा वाला वहां पर उनकी अपेक्षा से असंख्यात गुणे होंगे। उनसे अल्पतर अनुभाग के उद्गीरक जीव असंख्यात गुणे, उनसे भुजगार अनुभाग के उद्गीरक जीव विशेष अधिक। इसी प्रकार तिर्यंचों में जानना चाहिए। देखो ये परिमाण निकालो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना। 145 नीचे परिमाणानुगम लिखा है ना, तो मिथ्या तो नपुंसक वेद के तीन पदों के उद्गीरक जीव अनंत है, भुजगार अल्पतर और अवस्थित वाले तीनों ही अनंत हैं, और अवक्तव्य वाले जीव असंख्यात है। उसके भी असंख्यात है, सम्यक प्रकृति के भी असंख्यात है, उसका आपस में अल्प बहुत्व नहीं हो रहा है। पहले आपका जो प्रश्न था ना, मिथ्यात्व के अवक्तव्य और सम्यक्त्व के अवक्तव्य उसमें अल्प बहुत्व नहीं हो रहा है, परंतु उनके अपने अपने पदों में अल्प बहुत्व देख रहे हैं। भागा भाग में देखो ऊपर, अल्प बहुतों में हम कम से अधिक की ओर बढ़ते हैं, भागा भाग में पूरे जीवों के कितने भाग प्रमाण है उतनी बात करते हैं। तो वहाँ पहले में पहले बड़ा वाला भाग बताएंगे, भुजगार वाले अधिक द्वितीय है, अल्पतर वाले कुछ कम द्वितीय भाग है, आधे से कुछ कम है, अवस्थित वाले असंख्यात वे भाग प्रमाण और अवक्तव्य अनंत वे भाग, यानी टोटल जीवों के अनंत वे भाग है, उसकी संख्या असंख्यात। अब यहाँ हमने क्या देखा था, अभी अल्पबोध में उल्टा क्रम, सबसे कम हमने मिथ्यात्व नपुंसक वेद के बारे में अवक्तव्य वाले सबसे कम देखे, उनसे अनंत गुणे अवस्थित वाले, उनसे असंख्यात गुणे अल्पतर वाले और भुजगार विशेष अधिक, क्योंकि वे आधे से थोड़े ज्यादा है, वे आधे से थोड़े कम है तो विशेष अधिक हो गए। भागा भाग के एग्जैक्ट उल्टा है ये। अभी हमने सम्यक वाली प्रकृति की भी बात देखी, 16 कषायों की वहां देखनी थी ना, देखो यहाँ वही परिमाण में देख लो पहले। अभी हमने नपुंसक वेद और मिथ्यात्व की देख लिया, नीचे से तीसरी लाइन 145 पेज, सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व स्त्रीवेद और पुरुष वेद के सभी पदों के उदीरक कितने तो असंख्या है, 16 कषाय 9 कषायों के कितने तो अनंत है सभी पदों के, फिर भी उनका जो प्रोपोर्शन है वो इस तरह से, जो भागा भाग में भी हमने देखा था। वहाँ अवक्तव्य वाले भी अनंत हो गए, फिर भी वो असंख्यात भाग में लिया था उसको, इसलिए देखो अभी हमने जो पढ़ा था 16 कषायों के बारे में पढ़ा था ना, पहला नंबर अवस्थित वालों को लिया था, फिर अवक्तव्य वाले असंख्यात गुणे लिए थे, फिर अल्पतर और बाद में बुजगार।
खाली यहाँ पे क्या डिफरेंस की वजह, सम्यक तो सम्यक दिखे तो मैं जो पहला पद अभी अवस्थित वाला है वो असंख्यात वाला असंख्यात हो गया और उसमें प्रोपोर्शन बढ़ेगा, और यहाँ पे 16 कषाय में अनंत हो जाएगा ना, अवस्थित वाले भी अनंत है।
हाँ, अवक्तव्य वाले भी अनंत है,
सम्यक तो सम्यक दिखे तो मैं
वो अवस्थित वाला, परंतु उनका प्रोपोर्शन ये रहेगा, कितने गुणा में वो तो कोई डिफरेंस, यानी अवस्थित से अवक्तव्य असंख्यात गुणा का और है तो वे अनंत, उसका अर्थ क्या हुआ वो भी अनंत है। हाँ। अनंत में असंख्यात गुणा वाला प्रपोर्शन हो गया। अभी हम 154 पृष्ठ पर आए, आदेश से, यानी सामान्य तीरंचों में ऐसा ही घटित होगा, अब आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व के अवक्तव्य अनुभाग के उदीरक जीव सबसे स्तोक है, ओघ में भी हमने अवक्तव्य लिया, परंतु वहाँ अनंत गुणे में चले गए थे बाद में अवस्थित के लिए। अब यहाँ कहते उनसे अवस्थित अनुभाग के उदीरक जीव असंख्यात गुणे, शेष भंग ओघ के समान है, यानी अवस्थित के आगे वहाँ पर हमने अल्पतर वाले उससे असंख्यात गुणे देखे थे और भुजगार वाले उनसे विशेष देखे थे, है तो इनका प्रमाण असंख्यात, वहाँ अनंत था फिर भी वहाँ भी असंख्यात गुणे कहा था, केवल अवक्तव्य से अवस्थित में जब आए थे तो उसको अनंत गुणा कहा था। अब नारकियों में सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व 16 कषाय और 7-9 कषायों का भंग ओग के समान है, इतनी विशेषता है, इनमें नपुंसक वेद के अवक्तव्य अनुभाग के उदीरक जीव नहीं है, क्योंकि नारकियों में नहीं होंगे। सम्यक सम्यक मिथ्या तो हमने क्या देखा था, सबसे कम अवस्थित है, फिर अवक्तव्य असंख्यात गुणे, अल्पतर उनसे असंख्यात गुणे और भुजगार कुछ अधिक
विशेष अधिक।
पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में ओघ के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व और नपुंसक वेद के अवक्तव्य अनुभाग के उदीरक जीव सबसे स्तोक है, उनसे अवस्थित अनुभाग के उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं, वह अनंत गुणे कहे थे। विशेष भंग ओघ के समान। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकों में स्त्री वेद नहीं है तथा इनमें नपुंसक वेद का भंग पुरुष वेद के समान है। क्योंकि तीरण से पर्याप्त में दोनों ही आते हैं ना, पुरुष वेद और नपुंसक वेद वाले आते हैं, और नपुंसक वेद का पुरुष वेद के समान है, इसका अर्थ क्या है? हमने ओघ में मिथ्या तो नपुंसक वेद को एक साथ बताया,
अवस्थित वेद पहले लेते हैं यहाँ पे, अवस्थित
और यहाँ पर अवस्थित वाला पहला लेना और बाद में अवक्त वेद लेना, क्योंकि हमने 16 कषाय और 8 9 कषाय का नंबरिंग अलग पद्धति से किया था। अब यहाँ पर वही चलेगा। योनि नियम में पुरुष वेद और नपुंसक वेद नहीं है तथा इनमें योनि नियम में स्त्री वेद के अवक्तव्य अनुभाग के उदीरक जीव नहीं है पंचेंद्रियों में, तिर्यंचों में। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 7 9 कषायों का भंग पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व और नपुंसक वेद के अवक्तव्य अनुभाग के विदिरक जीव नहीं है, यहाँ है ही नहीं, वहाँ तो थे, तो ये सबसे कम हो गया अवस्थित वाले,
अवक्तव्य वाला संख्या यहाँ पे अवक्तव्य नहीं,
अवस्थित वाले सबसे कम, उनसे असंख्यात गुणे अल्पतर वाले और उनसे विशेष अधिक दीर्घकार वाले, वही देखा था ना हमने। मनुष्यों में मिथ्यात्व 16 कषाय 7 9 कषायों का भंग पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान है।
अवक्तव्य वाले
यहाँ मिथ्यात्व में हमने क्या देखा था, पंचेंद्रिय तिर्यंचों में ऊपर देखो ना, अवक्तव्य वाले सबसे थे कम। मनुष्य कहा तो असंख्यात लेना, तो उनसे अवस्थित वाले असंख्यात गुणे हो गए।
मिथ्यात्व का अलग,
हरेक का अलग, परंतु हरेक का पंचेंद्रिय तिर्यंच के समान। तो मिथ्यात्व का पहले अवक्तव्य लेना, फिर उनसे अवस्थित असंख्यात गुणे, उनसे अल्पतर असंख्यात गुणे और भुजगार विशेष। 16 कषाय और 7 9 कषाय में
अवस्थित वाला पहला,
पहले किसको लेना? अवस्थित वाले को लेना,
अवक्तव्य
बाद में अवक्तव्य वाले को लेना, जो हमने ओघ में भी देखा था, फिर अल्पतर और बाद में भुजगार। अभी मनुष्यों में ही सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुष वेद के अवस्थित अनुभाग के उदीरक जीव सबसे स्तोक, उनसे अवक्तव्य अनुभाग के उदीरक जीव संख्यात गुणे, यह संख्यात गुणा करना, क्योंकि मनुष्यों में करने वाले जो है, मनुष्यों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व तो पर्याप्त में होगा, स्त्रीवेद और पुरुष वेद भी उनमें ही होगा, तो वहाँ संख्यात गुणा का प्रपोर्शन देगा। जब मनुष्य की बात की थी तो अपर्याप्तों को इंक्लूड किए थे, असंख्यात गुणा कहा था, उनसे भुजगार अनुभाग के उदीरक जीव विशेष अधिक है, अल्पतर के संख्यात गुणा कहा था, ये यहाँ डिफरेंस। अवस्थित सबसे कम थे, अवक्तव्य उनसे संख्यात गुणे और अल्पतर के उनसे संख्यात गुण और भुजगार के विशेषाधिक। इसी प्रकार 155 पर आते भी मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि संख्यात गुणा करना चाहिए, वह भी संख्यात गुणा ही था ना। और मनुष्य पर्याप्तों में तो वो मिथ्यात्व वगैरह उसमें भी संख्यात गुणा करना चाहिए, नहीं समझे? जब मनुष्यों में हमने कहा मिथ्या तो 16 कचा है, 7 9 कचा है, वहाँ असंख्यात गुणा किया था,
अपर्याप्त।
अब मनुष्य पर्याप्त कहेंगे या मनुष्य नहीं कहेंगे तो संख्यात गुणा। पर्याप्त को में स्त्री वेद नहीं है, इनमें नपुंसक वेद का भंग पुरुष वेद के समान है। पर्याप्तों में
अवस्थित वाले सबसे कम हो गए।
मनुष्यनियों में पुरुष वेद और नपुंसक वेद नहीं है, इनमें स्त्री वेद का भंग मिथ्यात्व के समान है। मिथ्यात्व में सबसे पहला अवक्तव्य का लेना, क्योंकि अवक्तव्य उसमें उपशम श्रेणी से उतरते हुए होगा। मनुष्यनी में स्त्री वेद का अवक्तव्य,
नपुंसक वेद का उल्टा लिया, वो सम्यक्त्व के समान है, अरे पुरुष वेद के समान।
क्योंकि पुरुष वेद का वो हमने अलग लिया था ना,
नपुंसक
अवस्थित सबसे कम,
अवस्थित सबसे कम, अवक्तव्य वाले
बाद में अवक्तव्य। ऐसा क्यों कहा बोलो?
नपुंसक वेद में तो अवस्थित तो वो असंख्यात लोग प्रमाण, उसका डिफरेंस पड़ेगा तो वो सबसे कम होंगे।
श्रीवेद में अवक्तव्य और नपुंसक वेद में अवक्तव्य में,
हाँ, श्रीवेद में श्रेणी की अपेक्षा अवक्तव्य वाले सबसे कम हो जाएंगे।
तो नपुंसक वेद में वही रूल क्यों नहीं लगाए, प्रश्न। वही रूल लगाना था ना, उनकी भी, उनकी भी संख्या अल्प होगी, त्रिवेदियों से भी अल्प होनी चाहिए।
अरे पर्याप्त में तो पुरुष वेद और नपुंसक दोनों साथ,
पर्याप्त जब कहेंगे मनुष्य पर्याप्त, वहाँ पुरुष वेद में से नपुंसक वेद में आने वालों की भी बात वहाँ लेनी है, तो उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, उसकी अपेक्षा अवस्थित वाले कम हो जाएगी। ख्याल में, जब हम मनुष्य नहीं कहते तो मात्र त्रिवेदी है, उनका वक्तव्य मात्र
श्रेणी
से उतरते समय होगा। और मनुष्य पर्याप्त में जब नपुंसक वेद की बात करते हैं, तो मनुष्य पर्याप्त के लिए पुरुष वेदी नपुंसक वेदी दोनों आ गए। तो कोई पुरुष नपुंसक में जन्म लेगा मनुष्य में, तो उसका वक्तव्य कहेंगे मनुष्य का मनुष्य ही रहा, तो उनकी संख्या अधिक सिद्ध होगी वहां पर। स्त्री वेद का भंग मिथ्यात्व के समान है, उसमें अवस्थित
सबसे कम होंगे और वहाँ पे अवस्थित सबसे कम होंगे।
देवों में पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि नपुंसक वेद नहीं है, तथा स्त्री वेद और पुरुष वेद के अवक्तव्य अनुभाग के उदीरक नहीं है। इसी प्रकार भुवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी तथा सौधर्म और ऐशान कल्प के देवों में जानना चाहिए। इसी प्रकार सनत कुमार कल्प से लेकर नौ ग्रवेक तक के देवों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है, इनमें स्त्री वेद नहीं है। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में, सर्वार्थ सिद्धि तक को लिया, सम्यक्त्व के अवक्तव्य अनुभाग के उदीरक जीव सबसे श्लोक उनसे अवस्थित अनुभाग के उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं। क्योंकि सम्यक्त्व के तो मात्र द्वितीयोक्षम में से आने वाले जीव हैं, अवस्थित उनसे असंख्यात गुणे हैं, उनसे अल्पतर अनुभाग के उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं, उनसे भुजगार अनुभाग के उदीरक जीव विशेष अधिक हैं। बारह कषाय और सात नौ कषायों का भंग आनत कल्प के समान है, इतनी विशेषता है, सर्वार्थ सिद्धि में संख्यात गुणा करना चाहिए, यानी उसका प्रपोर्शन संख्यात गुणा करेंगे। बारह कषाय सात नौ कषाय में कैसे रहेगा?
अवस्थित वाले सबसे कम, अवस्थित वाले सबसे कम हो जाएगा ना,
हाँ,
अवक्तव्य वाले संख्या गुण हो जाएगी।
बारह कषाय में, जैसे हमने वहाँ 16 कषाय में लगाते थे, ये 12 कषाय में लगाना है, क्योंकि सारे समय दृष्टि अनंत अनुबंधी का सवाल नहीं है यहाँ पर, इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। इस प्रकार भुजगार समाप्त हुआ। भुजगार के बाद जो हम हमेशा कहते हैं पद निक्षेप का प्रकरण है, वहां तो केवल भुजगार है कि अल्पतर है, इतनी बात है। अब यहाँ कहेंगे वृद्धि, उत्कृष्ट हुई कि जघन्य हुई, हानि उत्कृष्ट हुई कि जघन्य हुई, वो वृद्धि का प्रमाण वृद्धि अनुयोग में देखते हैं। यहाँ तो मात्र पद निक्षेप का प्रकरण, उसमें ये तीन अनुयोग द्वार हैं, समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबोध, तीन ही हैं। उनमें से समुत्कीर्तना दो प्रकार की है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान अनुभाग उदीर्णा है, बस है इतना कह दिया। स्वामित्व तो स्वामित्व अनुयोग में कहेंगे, सब नारकी, सब तीर्यंत, सब मनुष्य और सब देव जिन प्रकृतियों की उदीर्णा करते हैं उनका भंग ओघ के समान है। यानी जहाँ जिसका कहते हैं, जहाँ अभी हर एक की वृद्धि समान की बात नहीं है, उत्कृष्ट वृद्धि है, उत्कृष्ट हानि है और उत्कृष्ट अवस्थान है। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए, इसी प्रकार जघन्य को भी जानना चाहिए। यानी कहेंगे सभी प्रकृतियों की जघन्य वृद्धि है, जघन्य हानि है, जघन्य अवस्थान है, इतना बता दिया उन्होंने। ये पद निक्षेप का नंबर एक हुआ समुत्कीर्तन। अब स्वामित्व है पद निक्षेप का नंबर दो। स्वामित्व के दो प्रकार है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व और सोलह कषायों की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है, उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, तो हमने कहा था कि उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाले के होती है। यहाँ उत्कृष्ट वृद्धि ने पहले कम थी और बाद में बहुत डिफरेंस से लेकर उसकी वृद्धि होने लगी, वो किसके होती है, जो उत्कृष्ट सत्कर्म वाला जीव उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ, ऐसे अन्यतर मिथ्या दृष्टि के उनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है।
सत्कर्म में उत्कृष्ट चाहिए अनुभाग,
उत्कृष्ट अनुभाग है और वो उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ है, क्योंकि सत्ता में उत्कृष्ट होते हुए भी वो लगातार उत्कृष्ट नहीं रही, उदीर्णा था। हमने देखा तो ये तो हानि और वृद्धि चलती है, भुजगार अल्पतर चलता रहेगा, तो उसने भुजा अल्पतर किया और फिर उत्कृष्ट सत्ता में तो है उसको उत्कृष्ट, तो उसकी वृद्धि होगी। उत्कृष्ट हानि किसके होती है, जो उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला अन्यतर जीव मरा और बादर केंद्र में उत्पन्न हो गया। उसके उनकी उत्कृष्ट हानि होती है, यानी अभी उसके जो उसके अपने प्रमाण में उसका उदय उदीर्णा होगी, उसकी उदीर्णा जघन्य अनुभाग रूप से होगी। यहाँ स्थिति की बात मत सोचो, हम क्या सोचते हैं, यहाँ उत्कृष्ट बंद किया है तो एकेंद्र में जाने पर उतनी उसकी उदीर्णा होगी, होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। स्थिति उदीर्णा में तो हमने देखी थी, उतने ही स्थितियों में से उसकी उदीर्णा होती, कितने निषेकों में से होती वहां देखा था। यहाँ तो बहुत बहुत मंद है, उसके कम तो श्रेणी में ही होते जीवों के। ना ना, स्थिति की अपेक्षा हमने बात की थी, जैसे हमने बासो पर बासो वगैरह देखा हाँ। था स्थिति अपेक्षा बात कर रही मैं। हाँ
या सूक्ष्म एकेंद्रिय से भी वादर वाला बीच में है तो उसका जगन पे जगन या
देखो सूक्ष्म एकेंद्रिय में डायरेक्ट जाता नहीं, नहीं है ना अभी ये देव लेयान क्योंकि सूक्ष्म में तो मनुष्य तिरंज भी जाएंगे परंतु अंतर्मूर्त के बाद जाएंगे मनुष्य तिरंज
अंतर्मूर्त पश्चात जाएंगे
उत्कृष्ट परिणाम से जो हम बंधन में देखा था हमने अंतर्मूर्त के बाद वहां जाते और देव तो इमीडिएट दूसरे समय में मरकर बादर एक केंद्र में जा सकते हैं तो वहां जितना अनुभव का उदय था क्योंकि वहां उत्कृष्ट संकल्प परिणाम थे वहां उत्कृष्ट अनुभव का उदय चल रहा था यानी उदीर्ण हम उसको कह रहे हैं यहाँ पर और एक केंद्र में गया तो एक केंद्र के योग्य होने लगेगी अभी तो उनकी उत्कृष्ट हानि होती है यहाँ कुछ लिखा नहीं है परंतु हमने पहले देखा था और सूक्ष्म इसलिए नहीं लिया कि सूक्ष्म में इतने जघन्य विशुद्धि नहीं होती बादर की ज्यादा जघन्य होती
ये बादर वाले सबसे बीच में है ना वो हमने जो देखा था उसमें
नहीं उसमें स्थिति देखी थी बादर वाले बीच में नहीं थे सूक्ष्म अपर्याप्त बीच में थे बादर दोनों ओर थे उत्कृष्ट की ओर भी और जघन्य की भी ओर
बादर वाले
बादर पर्याप्त यहाँ लिखा नहीं बादर एक इंद्र इतना ही लिखा है पर्याप्त में और जघन्य हो परंतु यहाँ तो पर्याप्त होने पर्याप्त में ही आएगा और उसके पहले समय में यथा योग्य जो कोई हो
तो ये उत्कृष्ट हानि ये बैसठ साल वाला वाले को होगी में जाने वाले को होगी
क्या वहीं पर एक इंद्रिय थोड़े ही बाद एक इंद्रिय वो दूर से दूर कहाँ पर है वो बात है यहाँ का पृथ्वी का एक
जनरली ये ऊपर
यहाँ का पृथ्वी का एक नहीं होगा क्या वो जनरली ऊपर इसलिए लेखा था कि हमने के स्पर्शन अधिक से अधिक देखा ना था इसलिए सबको वहीं पर नहीं भेजना नीचे की पृथ्वी में नहीं जाते परंतु यहाँ रत्ना पृथ्वी में तो आएंगे ना पृथ्वी का ही सारे यहाँ
नहीं वो पिछले से वाले देखे थे इसके अपेक्षा नहीं है उसके तो इतना उत्कृष्ट परिणाम भी नहीं हुआ
वहाँ उत्कृष्ट स्पर्शन हमने देखना था इसलिए उसको वहाँ उत्पन्न कराया था हाँ सारे पंचेंद्रिय है ना देव नहीं जाएंगे सारे एक इंद्रिय कोई सूक्ष्म बादल आपस में चल रहे नीचे के पृथ्वी में पंचेंद्रिय जी
हमने देव की मुख्यता से देखा था
देवों की मुख्यता से देव वहाँ कहाँ जाते हैं उसकी मुख्यता से स्पर्शन देखना था इसलिए मिथ्या दृष्टि तो जीव जा ही सकते वैसे तो सासाधन में भी मरकर कहाँ तक जा सकते उसकी बात वहाँ थी ये उत्कृष्ट हो गए ना हानि उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है जो उत्कृष्ट अनुभव की उदीर्णा करने वाला अन्यतर जीव तत्प्राय जो विशुद्धि को प्राप्त हुआ उसके उनका तदनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है हमने देखा था दो समय तक होता है तो ये उसका अवस्थान देखा
ये उत्कृष्ट हानि के पश्चात अवस्थान नहीं लिया अवस्थान तो उत्कृष्ट की उदीर्णा करने वाला तत्प्राय जो विशुद्धि को प्राप्त होता है उसको लिया
हाँ वो अल्प बहुत हमने देखना उत्कृष्ट वृद्धि ज्यादा है कि उत्कृष्ट हानि ज्यादा है जो ज्यादा होगा उसको अवस्थान कहेंगे ना उसमें लेंगे वृद्धि ज्यादा होगी इसलिए वहाँ अवस्थान बताए उसके साथ जो अधिक है उसके साथ अवस्थान बताएंगे उत्कृष्ट वाला ना उत्कृष्ट अवस्थान तो ये है हानि के बाद है वृद्धि के बाद कहाँ है देखो उत्कृष्ट अनुभव की उदीर्णा करने वाला अन्यतर जीव तत्प्रायोग्य विशुद्धि को प्राप्त हुआ उसका उनका तदनंतर समय में
ये उत्कृष्ट हानि हमने एक
हानि के बाद ये हानि के बाद ही है
हाँ, तो उत्कृष्ट हानि हमने एक इंद्रिय में देखी तो ये के एक इंद्रिय जीव को अवस्थान होगा नहीं हानि के पश्चात जो अवस्थान होगा इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा
होगा ना उत्कृष्ट हानि हुई ना, पहले क्या था, उत्कृष्ट अनुभव की उदीरणा करने वाला था, फिर तत्प्रायोगी विशुद्धि को प्राप्त हुआ, तदनंतर समय में उसको उत्कृष्ट अवस्थान होता है।
तो ये एक ही में होगा ना,
ही मत लगाओ यार, अब ये उसी पर्याय में रखना है।
हानि हमने कहाँ पे देखी, एक इंद्रिय को होगी बराबर, तो उत्कृष्ट अवस्थान वहाँ पे ही होगा, इसे भी रख लेते हैं।
अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, क्योंकि ओग में अलग होगा, आदेश में अलग होगा।
नहीं, ओग की अपेक्षा हम लोग को याद कर रही है ना अभी तो।
अभी तो ऊपर उत्कृष्ट हानि तो वो मरकर वहाँ जाने वाले की बात चल रही है उन्होंने, तो अवस्थान भी हानि के पश्चात ही लिया है यहाँ पर। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, पहले किसके लिए, वो उसे मिथ्यात्व और 16 कषायों की बात। अब सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है, तत्प्रायोगिक संकलेश परिणाम वाला मिथ्यात्व के अभिमुख हुआ, अंतिम समय में विद्यमान जो अन्यतर जीव है उसके उनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। और उत्कृष्ट हानि किसके होती है, तत्प्राय जो उत्कृष्ट अनुभव की उदीरणा करने वाला जो अन्यतर जीव तत्प्राय जो विशुद्धि को प्राप्त हुआ उसके उनकी उत्कृष्ट हानि होती है, तथा उसी के अनंतर समय में उनका उत्कृष्ट अवस्थान होता है। यहाँ भी हानि के बाद लिया, तत्प्रायोगिक उत्कृष्ट अनुभाग लिया, क्योंकि अंतिम समय में होने के बाद तो उसको तदनंतर समय नहीं ले सकते।
वो तो उत्कृष्ट वृद्धि में देखा, हानि में तो
वो तो ऊपर बता दिया, उत्कृष्ट वृद्धि किस कहाँ होती
तो
वो बता दिया,
परिणाम वाले को लिया।
और हानि परंतु उसके बाद जो उत्कृष्ट संकलेश जो मिथ्यात्व के अभिमुख है
उसका उत्कृष्ट
उसके पश्चात उसका तो हानि नहीं होगी, क्योंकि वो अंतिम समय लिया था। अब इसलिए तत्प्रायोगिक शब्द डाला, यानी उसी गुणस्थान में है जहाँ अधिक संकलेश है, अभी मिथ्यात्व के अभिमुख नहीं है, परंतु उस गुणस्थान के योग्य उत्कृष्ट संकलेश परिणाम है और बाद में उसकी विशुद्धि है। उदय जहाँ है
चौथे से सातवें तक भी होगी,
अभी कहाँ वो संकलेश से कहाँ कितनी हानि हो सकती है वो यथा योग्य समझ गए। कौन से गुणस्थानों की वो चल रहे यहाँ नहीं उन्होंने बताई, वहाँ तो गिर जाएगा ना बाद में। संकलेश ज्यादा है वहाँ पर, वैसे उसके कंपेरिजन चौथे वाले को भी संकलेश ज्यादा है।
चौथे वाले को जो
रेगुलर संकलेश ज्यादा है और उसमें वो तो और ज्यादा कभी परिणाम और संकलिष्ट हो जाएंगे। स्त्रीवेद और पुरुषवेद की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है, तत्प्रायोगिक जघन्य अनुभव की उदीरणा करने वाला जो अन्यत्र 8 वर्ष का करव, करव का अर्थ क्या देखा था, ऊंट, उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ उसके उनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। दोनों के लिए वही है,
श्रीवेद वाले को श्रीवेद लेना, पुरुषवेद वाले को पुरुष।
उत्कृष्ट हानि किसके होती है, उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करने वाला जो अन्यतर वही करव तत्प्रायोगिक विशुद्धि को प्राप्त हुआ उसके उनकी उत्कृष्ट हानि होती है। तथा उसी के तदनंतर समय में इनका उत्कृष्ट अवस्थान होता है, सर्वत्र आने के पश्चात क्रिया है ना। इसी प्रकार नपुसक वेद अरति शोक भय और जुगुप्सा की अपेक्षा जानना चाहिए। करभ यानी ऊंट, करभ ऊंट, ऊंट 8 वर्ष का ऊंट। हाँ, यानी जिसने उत्कृष्ट किया है, नहीं नहीं वही करब 8 वर्ष का जो उत्कृष्ट संकलेश वृद्धि की थी, अब वृद्धि के बाद फिर वो विशुद्धि को प्राप्त हुआ तो उसकी उत्कृष्ट हानि होगी। भले सत्ता में पड़ा है उससे कुछ मतलब नहीं है, वो उसके परिणाम किस रूप से है उसके अनुसार उसके उदीर्णा हो रही है, उदय हो रहा है। इससे एक बात सिद्ध होती है ना, ये कर्म के अनुसार ही
हानि हो जाएगी,
हो जाएगी उसमें क्या, ये तो ऐसे भी होती रहती है अंतर्मूर्त
वहाँ पे सत्संग पतित होती है, यहाँ पे तो
सत्संग पतित नहीं है, अनंत गुणी हानि वृद्धि चलती रहती है हमेशा ही। परंतु यहाँ उत्कृष्ट हानि की बात है, उसके योग्य उसके परिणाम हो गए वहाँ पर।
क्या क्या ऐसे उसको भी तत्वों का कुछ ऐसे
तत्वों की कोई सम्मान
तत्वों का नहीं, पर उसके भी ऐसे परिणाम हो गए।
अरे एक इंद्रिय में संकलित विशुद्धि होती है ना, एक इंद्रियों के भी हो रही है, यहाँ तत्व की बात कहाँ है, तत्व की बात तो समय वृक्ष में
नहीं, ये पंचेंद्रिय
तो क्या हुआ
धारणा की अपेक्षा,
ये तो संकलेश विशुद्धि हर जगह चल रहे है, वहाँ कोई तत्व का संबंध नहीं है। समय दृष्टि होगा तो उसका तो वो बात अलग होगा, क्योंकि स्त्री वेद पुरुष वेद की तो बात सब में चलेगी।
ये उत्कृष्ट आदि की अपेक्षा बात करते हैं ना, तभी इसीलिए मैंने पूछा कि वहाँ पे कुछ ऐसे परिणाम हो सकते, ये भी संगी पंचेंद्रिय है।
हाँ तो उत्कृष्ट हानि सामान्य में हानि देखना है, परंतु संकलेश उत्कृष्ट संकलेश से उत्कृष्ट हानि देखना है। केवल हानि नहीं देखनी है, मात्र हानि तो समय दृष्टि के भी होगी, उसके उत्कृष्ट हानि वृद्धि दोनों भी चलेगी कि नहीं चलेगी,
चलेगी।
तो आदेश में जघन्य कहाँ होता है तो हमने वही देखा था, समय दृष्टि जब ज्यादा विशुद्ध है तब उसकी जघन्य देखी, और उत्कृष्ट किसके देखा था, मिथ्या दृष्टि को देखा था।
तो मिथ्या दृष्टि
अभी उसके समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि का यहाँ बता करो, तत्प्रायोगे विशुद्धि हुई उसकी, उत्कृष्ट संकलेश के नेक्स्ट समय में तो समय को नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, पहले संकलेश को था और उसके तत्प्रायोगे, हर जगह तत्प्रायोगे शब्द डाला है, कोई टॉप मोस्ट संकलेश टॉप मोस्ट विशुद्धि में नहीं आ सकता, तो तत्प्रायोगे यथा हुई जितनी होगी उतनी वहां पर हानि होगी उसकी, और तदनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है, हर जगह हानि हानि के बाद ही है। इसी प्रकार नपुसक वेद अरति शोक भय और जुगुप्सा की अपेक्षा जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथ्वी के नारकी के कहलाना चाहिए इनका जो, हाँ क्योंकि उत्कृष्ट संकलेश उनके है और उनकी उत्कृष्ट हानि हो गई इस तरह से। इसी प्रकार हास्य रति की अपेक्षा जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि सहस्रार कल्प के देव के कहलाना चाहिए, क्योंकि उसका उत्कृष्ट उनके होता है।
एक जगह में शतार सहस्रार कहा था, बाकी सब
हाँ एक ही जगह शतार सहस्रार दोनों को कहा था,
बाकी
सर्वत्र सहस्रार के लिए दोनों में लिखा है,
एक जगह लिखा था,
एक जगह लिखा था। अब आदेश से बात करें, नारकियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 7 नौकषायों की, ये 7 नौकषाय भी इसी में लिए उन्होंने,
पुरुष स्त्री के ही लिए हैं
वहाँ पर, वह अरति भय जुगुप्सा के अलग अलग किए थे ना हमने वहाँ पर, नपुसक वेद अरति शोक भय जुगुप्सा पांचों को अलग निकाला था, त्रिवेद पुरुष को अलग निकाला था, और 16 कषाय और मिथ्यात्व का एक साथ बताया था। ओघ्नि। अब यहाँ नारकियों की बात है, इसे कहते हैं मिथ्यात्व 16 कषायें और 7-9 कषायों की। उत्कृष्ट बुद्धि किसके होती है? तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ उसके उनकी उत्कृष्ट बुद्धि होती है। और उत्कृष्ट हानि किसके होती है? उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव तत्प्रायोग्य विशुद्धि को प्राप्त हुआ उसके उनकी उत्कृष्ट हानि होती है। मैं तो इस तरह से सोच रही हूँ, सत्ता में तो उत्कृष्ट पड़ा है, उत्कृष्ट हानि हो रही है, उत्कृष्ट अनुभव की उदीर्णा भी कर रहा था, तो उत्कृष्ट अनुभव की उदीर्णा करते हुए को तत्प्रायोग्य विशुद्धि हुई और उसने अनुभव की हानि करके उदीर्णा हो रही है, हानि की, यानी कर्म का उदय हुआ इसलिए। नहीं तो उत्कृष्ट वाले की उत्कृष्ट ही होता रहेगा, उत्कृष्ट ही बंद होता रहेगा, उत्कृष्ट ही उदय आता रहेगा।
हाँ,
तो ये विशुद्धि क्यों हुई? ये प्रश्न है, कर्म के उदय से होती है
नहीं,
नहीं यही सोचो ना।
हाँ।
उल्टा तो हम हर जगह ये देखे है कि जीव की विशुद्धि हुई, यहाँ कर्मों में अनुभव घटकर उदय में आया।
हाँ।
सत्ता में पड़ा था देव संकलेश परिणाम में, मैक्सिमम वहाँ टॉप मोस्ट उसका अनुभव उदीर्णा चल रही थी, एकेंद्रीय में गया तो एकेंद्रीय योग्य उसकी उदीर्णा होने लगी। हाँ नहीं, मैं तो इसी तरह सोच रही कि हम हर जगह क्या लगाते हैं, कर्म का उदय आया इसलिए जीव को ऐसे परिणाम है। यानी और जो कोई निमित्त बनता है अनुभव के उदय से ही होता है। कितना स्थिति वाला कर्म उदय में आने वाला है, आ रहा है, उससे क्या मतलब है? कितने परमाणु उदय में आ रहे हैं उससे क्या मतलब है? जैसे सम्यक तो प्राप्ति के पहले हम देखते करण लब्धि में है तो वहां तो उसकी निर्जरा भी चालू हो जाते हैं, मिथ्या तो की भी गुणश्रेणी निर्जरा मिथ्या तो में भी होती है ना, असंख्यात गुना असंख्यात गुना उसका कर्म परमाणु निकल रहे हैं, फिर भी हर समय अनुभव कितना घट रहा है, यानी उदय किसका, ये फल किसका मिल रहा है? अनुभव का, ये मैं कहना था। यानी जीवों के परिणाम के अनुसार उसमें घटकर उदय में आ रहा है
दोनों ओर से।
हाँ
ये दोनों तरफ से ले सकते हैं, जीव का परिणाम अपने हिसाब से, उसका उदय अपने हिसाब से, क्योंकि नहीं तो ये जीव के परिणाम के अनुसार इसका उदय हो जाएगा।
देख रहे ये सारे मिथ्यात्व में क्या हो रहा है? अभी साता वेदने में जीव के परिणाम के अनुसार मत लगाओ, साता असाता वेदने की जो उदय उदीर्णा है, परंतु मोहनीय में तो उसी जीव के परिणाम के अनुसार अनुभव घटकर उदय में आ रहा है कि
इसे बाहर नहीं बोल सकते तो कोई
क्यों नहीं बोल सकते? अरे
जीव के परिणाम अनुसार उसका उदय आएगा।
हाँ।
तो वो डिपेंडेंट हो गए जीव के अनुसार, जीव के परिणाम
कोई किस पर डिपेंडेंट नहीं है, परंतु हमारी जो मान्यता थी कर्म का उदय आया तो इतना। हाँ। जीव को करना पड़ेगा।
हाँ, वहाँ पे निश्चित हो जाता है, पर हम लोग ऐसे बोले तो कोई उल्टा पकड़ लेगा,
पकड़ने दो ना अभी तक उल्टा पकड़ के उल्टा मानते आया है तो उसको तो ये तो पता चलेगा जीव के, देखो जीव के संकलेश से सत्ता में तो अनुभाग उतना का उतना पड़ा है, वो तो नष्ट नहीं हो सकता है। सम्यक प्रकृति का देखा, अनुभाग विभक्ति की अपेक्षा उसका थ्रू आउट जब तक समय दृष्टि है सत्ता में, सम्यक प्रकृति का अनुभाग उत्कृष्ट का ही उत्कृष्ट रहता है, फिर भी उसका उदय भी चल रहा है, उदीर्णा जो चल रही है तो उत्कृष्ट वो तो कम ज्यादा होती रहती है। क्यों? संकलित विशुद्धि के अनुसार, वो भी उन्होंने पहले बताया था। यदि जहाँ उत्कृष्ट अनुभाग सत्ता में है तभी उत्कृष्ट उदय आता है ऐसा अगर कहेंगे हम, तो जो एक इंद्रिय में से आया है उसकी सत्ता में है ही नहीं उत्कृष्ट। तो यदि उदय के अनुसार संकलेश होने लगे तो उसके उत्कृष्ट संकलेश परिणाम होगा ही नहीं।
हाँ वो तो मिनिमम भला ही रहेगा।
अरे इसमें तो कितनी स्वतंत्रता सिद्ध हो जाती है। और ये उल्टा लगता है हमको।
हेलो
उल्टा पकड़ने वाले अपने से पकड़ेंगे कि आपके कहने से पकड़ेंगे? ये तो रहने वाले ही है, तो विश्व की व्यवस्था ही है इसकी। सब लोग तो पकड़ेंगे ही नहीं, जिसकी जो योग्यता है उसका ही पकड़ेंगे। तो पकड़ने दो ना, वो तो थोड़े आपके कहने से, किसी के कहने से पकड़ते तो तीर्थंकरों का उपदेश कितना सुना है, आचार्यों के तो शास्त्र भरे पड़े, सीधा पकड़ते ना। हाँ देखो देखो, अभी हम आदेश से पढ़ रहे थे ना, हमने ये बात देखी थी, फिर पढ़ेंगे नारकियों में। आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व सोलकषाएं सात नौकषाएं की उत्कृष्ट वृद्धि किसकी होती है? तो तत्प्रायोग्य जगन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ उसकी उनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। और उत्कृष्ट हानि किसके होती है? उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव तत्प्रायोग्य विशुद्धि को प्राप्त हुआ उसके उनकी उत्कृष्ट हानि होती है।
हानि में अवस्थान लिया है तो वृद्धि से हानि ज्यादा होगी ऐसे ले सकते हैं?
वो अल्प बहुत या नहीं पहले समझो, एक एक विषय समझो।
हाँ। नहीं नहीं, इससे भी क्वेश्चन हाँ। आता है तो
नहीं आता है तो जब आएगा तो मन में रखो उसको। हाँ अन्य तरह नहीं, कोई भी कोई एक भी किसमें। हाँ क्योंकि उसको उत्कृष्ट कौन कर रहा था, तो करप कर रहा था
उसको उत्कृष्ट,
अन्य जीव इतने उत्कृष्ट नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। वही एक से वही करोगे यानी ऊंट में ये लागू होगा, ये बात कर जो उत्कृष्ट संकलेश वाला जो ऊंट जो अन्यतर करब कहो तो चले, परंतु अन्यतर वो संकलेश उत्कृष्ट करने वाला तो उत्कृष्ट करने वाला उतना ही करेगा। ए और बी समान कर रहे हैं तो ए को भी ले सकते बी को भी ले सकते,
उत्कृष्ट करने वाला अन्यतर
वही है, उत्कृष्ट करने वाला वही ऐसा लेना, बिल्कुल ऐसा ही लेना है। देखो उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला अन्यतर जीव, अन्यतर जीव ने कोई भी नारकी जो उत्कृष्ट कर रहा था वो जीव, और वहाँ करब के लिए वही लेखा वही है ना, यानी कोई भी, इसलिए वहाँ वही जीव लिया।
हाँ यहाँ पे ऐसे ही ले सकते ना कि उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला है उत्कृष्ट हानि कर सकता है, ऐसे ही ले सकते।
हाँ ऐसा ही लेना है। वहाँ अन्यतर वही करब लिया। हाँ। करब में अन्यतर लगाया। हाँ इसीलिए करब लिया।
हाँ।
अन्यतर वही करब लिया। वही करब क्यों लिए? उत्कृष्ट करने वाला वही करब,
कोई भी।
हाँ यानी वहाँ अन्यतर शब्द डाला है वहाँ उन्होंने, वो नीचे से तीसरी लाइन में अन्यतर वही करब, पहले अन्यतर आठ वर्ष का करब लिया, कोई भी है उसमें, कोई एक ही जीव कर सकता है ऐसी बात नहीं है। हाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो अन्यतर में नारकी कोई भी नारकी चलेंगे जो उत्कृष्ट कर रहा है, तो उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव तत्प्रायोगी विशुद्धि को प्राप्त हुआ उसके उनकी उत्कृष्ट हानि होती है, तथा उसी के तदनंतर समय में उनका उत्कृष्ट अवस्थान होता है, इतनी विशुद्धि। उसी के ने जिसने उत्कृष्ट हानि की है उसी के, क्योंकि हानि के नेक्स्ट समय में उत्कृष्ट अवस्थान होगा।
नहीं
कितने समय में उत्कृष्ट अवस्थान करेगा तो होगा। उसके उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ, उसके उत्कृष्ट वृद्धि हुई, वृद्धि के बाद उत्कृष्ट हानि होती है ऐसा नहीं लेना। उत्कृष्ट वृद्धि नहीं, थोड़ी जघन्य वृद्धि करके तो उत्कृष्ट तक पहुंचा है। तो उत्कृष्ट वाला जब जघन्य में आएगा, जघन्य नहीं कहेंगे तत्प्रायोग्य, तब उसको उत्कृष्ट हानि कहेंगे। परंतु जरूरी नहीं कि उसके उत्कृष्ट वृद्धि की और बाद में वो ड्रॉप हुआ ऐसा नहीं। हाँ, वही कहो या दूसरा वैसा ही, अन्यतर वही लिया ना, अन्यतर वही शब्द डाला ना, बिल्कुल उसी के तदनंत समय के लिए उसी के लिए, क्योंकि उत्कृष्ट जिसने हानि की है, उत्कृष्ट हानि के बाद जो उत्कृष्ट उतना ही रहेगा उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। हानि किसने की है, जो पहले उत्कृष्ट संकलेश में था, तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट उसकी तत्प्रायोग्य विशुद्धि हुई तो उसका ड्रॉप हुआ अनुभाग के उदीरणा में, तो उसने मैक्सिमम ड्रॉप हुआ। और नेक्स्ट समय में वही जीव अगर उतना ही रखेगा तो अवस्थान होगा उत्कृष्ट अवस्थान, वहां तो उसी के ले सकते हैं ना। तदनंतर समय में उनका उत्कृष्ट अवस्थान होता है उसी के, ने ऐसे अनेक जीव हो सकते हैं जो जो ऐसा करने वाला है उसी के। इतनी विशेषता है कि नपुसक वेद अरति शोक भय और ध्रुवसा की अपेक्षा सातवीं पृथ्वी के नारकी के कहलाना चाहिए। यानी वह अन्यतर ऊपर जो लिखा है वो पहले से सातवें नरक में कहीं भी घटित होगा, किसके लिए, मिथ्या तो 16 कथाएं सात नौ कथाओं के लिए, परंतु उनमें से सात नौ कथाओं में से भी नपुसक वे तरति शोक भय जुगुप्सा के लिए नारकी में, सातवें नरक के नारकी में ये बात घटित करें, क्योंकि इतना उत्कृष्ट उसकी उदीर्णा सातवें नरक में होगी। सम्यक पर सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है, हमने देखा ना उसकी तो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट कर रहा था, फिर उसकी हानि हो जाएगी। इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए।
तो यहाँ पे ये जो सम्यक पर सम्यक मिथ्यात्व रहता है वो चौथे गुण स्थान वाला सब चारों गति में हो सकता है कि मनुष्य में ही होगा?
अरे अरे
चारों गति
सम्यक मिथ्यात्व तो चारों गति में है।
नहीं बराबर है, पर मेरा क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य गति में जो सातवां गुणस्थान वाला जो सभ्य मिथ्यात्व के सम्मुख होता है उसको होगा कि
मिथ्यात्व के सम्मुख कोई होता ही नहीं?
नहीं वो तो बराबर है, पर वो चौथे में आएगा उसको उत्कृष्ट बुद्धि होगी कि नहीं? वो तो चौथे गुणस्थान वाला ही चारों गति में ले सकते हैं।
देखो अपने अपने गुणस्थान में जहाँ जिसकी वृद्धि कब होगी, जब विशुद्धि होगी, जितना है वहां से कितना वृद्धि हुआ वो बुद्धि का हमें डिफरेंशिएट है।
मिथ्यात्व के अभिमुख हुआ तो वो चौथे गुणस्थान वाला ही लेना पड़ेगा ना, वो मेरा क्वेश्चन है।
मिथ्यात्व के अनुभव अभिमुख वाला जो हमने केवल समय दृष्टि इतना ही, तत्प्रायोग्य संकलेश परिणाम वाला, संकलेश किसके ज्यादा हो गए चौथे से जो पहले में पहले आता है उसके होगा, ये पहले बात आ चुकी है अपनी। तीर्यंचों में, ये नारकी की बात हो गई, तीर्यंचों में मिथ्यात्व 16 कषाय 7 9 कषाय सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का भंग पहली पृथ्वी के समान है। पहली पृथ्वी में इसलिए कहा कि नपुसक वेद अरति शोक भय जुगुप्सा का कोई अलग से वहाँ कथन नहीं है, वो सामान्य से 7 9 कषायों में उसको ले लेना। स्त्री वेद और पुरुष वेद का भंग ओघ के समान है, यानी वो तीर्यंचों में वो करब वाले की बात है। इसी प्रकार पंचेंद्र तीर्यंच त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि अपना अपना वेद जान लेना चाहिए, क्योंकि पंचेंद्र तीर्यंच सामान्य कहते तो तीनों वेद की बात आती है, जब पर्याप्त कहेंगे तो हम पुरुष वेद नपुसक वेद है, और जब योनिनी कहेंगे तो स्त्री वेद। पंचेंद्र तीर्यंच पर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 7 9 कषायों का भंग पंचेंद्र तीर्यंचों के समान है, इतनी विशेषता है कि तत्प्रायोग्य संकलेश और विशुद्धि कहलानी चाहिए। यानी वहाँ भी जो उत्कृष्ट वृद्धि उत्कृष्ट हानि अवस्थान जो होगा उनके योग्य वहाँ परिणाम को ले लेना। जहाँ संकलेश ज़्यादा है वहाँ वृद्धि होगी, उसके बाद विशुद्ध हो जाएगा तो हानि होगी। मनुष्य त्रिक में पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद और पुरुषवेद का भंग मिथ्यात्व के समान है, क्योंकि जब ओघ में और तीर्यंचों में देखा तो वो करब को याद किया। और यहाँ मिथ्यात्व में क्या लेना
है,
हाँ बस मात्र संकलेश परिणाम लेना है, संकलेश और विशुद्ध इतना ही लेना। वो तीर्यंचों में स्पेसिफिकली वो करब में बताया था, वैसा यहाँ तो नहीं। देवों में मिथ्यात्व 16 कषाय, सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व, स्त्रीवेद पुरुषवेद, अरति शोक भय जुगुप्सा का भंग सामान्य मनुष्यों के समान है। अब यहाँ हास्य रति को अलग निकाले, हास्य और रति का भंग ओघ के समान है, क्योंकि ओघ में वो सहस्रार की अपेक्षा लगाई थी उन्होंने, उसमें उसका उत्कृष्ट यानी उत्कृष्ट वृद्धि और हानि वहाँ बताने थे। इसी प्रकार भवनवासियों से लेकर नौ ग्रविक तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि हास्य और रति को मिथ्यात्व के साथ कहलाना चाहिए। मिथ्यात्व के साथ कहलाना चाहिए यानी जहाँ संकलेश ज्यादा है, अन्यत्र ये सहस्रार को छोड़कर अन्यत्र जो
ये तो भवन वासी से
ग्रेवेट तक,
हाँ तो वहाँ पे तो सतर सहस्रार आता है, तो यहाँ पे
तो मात्र सतर सहस्रार में उसको अलग निकालेंगे, वो तो निकाला ही है उन्होंने। और बाकी जगह कैसे होगा, जहाँ संकलेश ज्यादा है वहाँ उत्कृष्ट उदीरना है, और वहाँ तो यानी विशुद्धि से संकलेश में जाएगा तो वृद्धि और वहां से हटेगा तो हानि। सनत कुमार कल्प से लेकर आगे स्त्रीवेद नहीं है। अनंत कल्प से लेकर नवग्रवी तक के देवों में तत्प्रायोग संकलेश और विशुद्धि कहलानी चाहिए। अनुदिश से लेकर सर्वांत सिद्धि तक के देवों में सम्यक व 12 कषाय और 7 नौ कषायों की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है। तत्प्राय के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाला जो अन्यतर वेदक समय दृष्टि जीव, उत्कृष्ट अनुभाग की सत्कर्म वाला तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ, उसके उनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। और उत्कृष्ट हानि किसके होगी, तो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव तत्प्रायोग्य विशुद्धि को प्राप्त हुआ, यानी जितने उत्कृष्ट में से जितना तो कम से कम हो सकता है उसकी उत्कृष्ट हानि कहलाएगी, तथा उसी के अनंतर समय में उनका उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।
साहित
को
छोड़ा है,
हाँ सम्यक प्रकृति लिया ना,
संकलेश और विशुद्धि जो होगी वो
सम्यक प्रकृति जो है
वो साहित का इतना ज्यादा नहीं होगा। वेदक सम्यक दृष्टि सम्यक सत्ता वाला
किसके होगा,
वेदक को जो साहित नहीं है उसको होगा,
उसको होगा, इसलिए वेदक सम्यक दृष्टि लिया। क्योंकि साहित करके आएगा तो अनुभव घटा के आएगा, हाँ, ना उसी के अनंत समय उत्कृष्ट अवस्था। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब जघन्य का प्रकरण है। अब तक तो हम उत्कृष्ट की बात सोच रहे थे, मैंने वृद्धि में उत्कृष्ट देख रहे थे, हानि में उत्कृष्ट देख रहे थे, अब वृद्धि और हानि में जघन्य देखना, कम से कम वृद्धि और कम से कम हानि। तो निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य वृद्धि किसके होती है। जो तत्प्रायोग्य संकलेश परिणाम वाला जीव अनंत भाग बुद्धि से बुद्धि को प्राप्त हुआ है, तत्प्रायोग इसलिए कहा कि और वृद्धि होने के लिए उसको कुछ अवसर है ऊपर, वृद्धि हो रही ना। ऐसे अधप्रवृत्त मिथ्या दृष्टि के, ये अधप्रवृत्त मिथ्या दृष्टि क्या होता है?
अधप्रवृत्त करण वाला नहीं,
करण में उसको
अच्छा बात।
जब सम्यक को में से मिथ्या तो में आता है, हमने उद्वेलना के प्रकरण में देखा था अधप्रवृत्त संक्रमण जो होता है, सम्यक समय मिथ्या तो जो है मिथ्या तो रूप से होते हैं।
यहाँ पे तो ये मिथ्या तो और अनंत अनुबंधी की बात है ना।
तो अधप्रवृत्त मिथ्या दृष्टिया ने भी समय में से मिथ्या तो में आया है, एक अंतर्मूर्त काल में उसकी विशुद्धि की हानि होती चली जाती है, एकदम तीव्र संकोच को प्राप्त नहीं होता है, थोड़ा 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 बढ़ता है। देखो जो तत्प्राय जो संकलेश परिणाम नहीं नहीं नहीं, हमने उसमें वो देखा था ये बात, यहाँ तो उदीर्णा की बात। मिथ्यात्व में आने पर मिथ्यात्व की उदीर्णा शुरू हो गई, तो अंतर्मूर्त तक लगातार थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती चली जाती, क्योंकि यहाँ तो अभी भी जीव थोड़ा वैसा विशुद्ध है, परंतु अभी हल्के हल्के वो संकलेश की ओर बढ़ रहा है।
अच्छा, करण परिणाम में तो विशुद्धि ठीक होगी,
वो अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ेगी। ये अधप्रवृत्त करण नहीं कहा, अधप्रवृत्त मिथ्या दृष्टि कहा। देखो जब सम्यक से गिरकर मिथ्यात्व में आता है जीव, तो एक अंतर्मूर्त तक उसकी विशुद्धि घटती चली जाती है, संकलेश होता चला जाता है, ये बात यहाँ देनी, उसको अधप्रवृत्त कहा। ये बात हमने कब देखी थी? सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना जो शुरू होती है
उसके पहले,
तो उद्वेलना उसको बाद में कहते हैं उद्वेलना संक्रमण, एक अंतर्मूर्त के लिए उसको अधप्रवृत्त संक्रमण कहते हैं। ये शब्द यहाँ आया, अधप्रवृत्त करण है वो करण लब्धि वाला करण, वो अलग, यह अधप्रवृत्त शब्द जो है वो सम्यक से छूट कर जो मिथ्या दृष्टि हुआ है उसके लिए आया। तो उनके जघन्य वृद्धि होती है, थोड़ी थोड़ी वृद्धि होते होते चलती है। तथा उसी के तदनंतर समय में यहाँ जघन्य वृद्धि किसके होती है? जो तत्प्राय संकलेश परिणाम वाला जीव संकलेश परिणाम वाला जीव अनंत भाग बुद्धि से बुद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसे अधप्रवृत्त मिथ्या दृष्टि के उनकी जघन्य वृद्धि होती है। ऑलरेडी वो संकलेश परिणाम वाला अनंत भाग बुद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ है और उसके अनंत समय में उसका जघन्य अवस्थान होता है, इसका अर्थ वो वृद्धि करते करते वो तेरी अवस्था में आया है, ऐसा ही लेना। एक अंतर्मूर्त तक उसकी संकलेश की ओर बढ़ रहा है, वो हल्के हल्के, यानी अभी वो विशुद्धि है और उसकी संकलेश हल्के हल्के बढ़ रहे, एकदम टॉप मोस्ट उसको संकलेश नहीं होगा, वहाँ थोड़ा थोड़ा संकलेश परिणाम होगा, परंतु उसमें अवस्थान वाला भी लिया उन्होंने, यानी इस पर अवस्था को प्राप्त हुए कि अभी वो स्टेडी हो सकता, पहला समय तो नहीं ले सकते, वहाँ तो थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही है। जघन्य हानि किसके होती है? ओ
ये तो तदनंतर समय में लिया है, तो इतने समय में
तदनंतर समय में संयम को प्राप्त होगा, ऐसे अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि को। हाँ, ये आगे का वाक्य अलग है, जघन्य हानि किसके होती है? जो तदनंतर समय में संयम को प्राप्त होगा, ऐसे अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के उनकी जगह में आनी होती है।
ये तो वेदक सम्यक, वेदक जो वेदक सम्यक के साथ जो संयम को प्राप्त करेगा ये करण वाला नहीं होगा ना, नहीं जो 28 के सप्ताह वाला मिथ्यात्व
और अनंतानुबंधी की जघन्य हानि कहाँ होगी, ये चल रही ना बात। पर वहां तो हम प्रति समय वो
नहीं, 28 के सत्ता वाला जो वापस जो संयम को प्राप्त करने को जा रहे हैं वो दो करोड़ शक्ति
रहेगा, यानी वो जो सम्यक्त से गिरकर मिथ्यात्व में आया है और वो वापस जो संयम को प्राप्त कर रहा है वो जीव।
ठीक है, ये अध प्रवृत्त वाला जो अंतर्मूर्त है वहाँ पे फिर वापस फिर के वो स्वयं को प्राप्त कर सकता है,
कर सकता है, परंतु वो अंतर्मूर्त चला जाएगा बीच में। कहीं कहीं हमने देखा ना कांडक घात के बिना वो प्राप्त करता है, ऐसा बहुत बार आया है ना, परंतु उत्कृष्ट संकलेश में से जाने वाले के लिए बात आई थी। कांडघात किए बिना भी जा सकते हैं, यदि जल्दी में जल्दी अगर जाता है अंतर्मूर्त में वापस वो, तो उसमें भी कुछ अंतर है।
ये तो जगन्य की बात है, उत्कृष्ट की बात ही नहीं है,
जगन्य की बात है।
हाँ, तो इसका भी इसका जगन्य हो सकता है,
जगन्य
हानि,
हानि की बात है।
हाँ,
हाँ ये दो जीव अलग है। हाँ, बिना करण के गया,
बिना करण के जा सकता है,
ये उसका जो हम वृद्धि वगैरह उसका प्रकरण देखेंगे ना, किसमें बिना करण का। हाँ, ने बिना करण का हमने पहले भी देखा था, कांडक किए बिना जो जाता है चलो यही रुकते हैं, जगन्य का प्रकरण फिर ले लेंगे। जावानी के ज्ञान से तुझे लो पालो, सोवाणी सकन हो सदा देख हो। मैं